कैसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना लिए। ऐ नबी इनसे कहो, लाओ अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिसमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा, इसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम मेरी बंदगी करो। अल्लाह अकबर। हर नबी का एक ही पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई, इसके हजूर भड़कर नहीं बोलते और बस इसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ इनके सामने इसे भी वो जानते हैं, और जो कुछ उनसे उछल है इससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय इसके जिनके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो इसके खौफ से लरसते रहते हैं, डरते रहते हैं। और जो इनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूं, तो इसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हमारे यहाँ जालिमों का यही बदला है। आप देख रहे हैं कितनी शदीद नफी है शिर्क की, हर तरह का शिर्क। क्योंकि आप देखिए कि ये बहुत बड़ा बुत होता है इंसान का। अल्लाह पर तकब्बुर के मारे एतराज करते हुए बातें छाटना, ये है वो है दिस है दैट, अल्लाह ताला कहते हैं कभी दुनिया से भी सवाल किए। अब देखिए कुछ लोगों को सारे सवाल कब सूझते हैं, जब उनको दीन पर अमल करना होता है। क्यों ना करें तो क्या होगा, फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है। छोटी सी मिसाल लीजिए, अगर कोई अमेरिकन वीजा लगवाने के लिए अम्बेसी जाता है, 10 सवाल वो आपसे पूछते हैं और 20 बातें आपसे मनवाते हैं। आपसे कहेंगे तस्वीर खिंचाओ जिसमें तुम्हारा ये कान नंगा हो और पीछे ब्लू हो आपके, और सीधे हो जाओ। फिर वो आपको विंडो में बुलाएंगे, क्यों जा रहे हैं अमेरिका? उस वक्त क्या हालत होती है? कोई चूँच रहा करता? उस वक्त देखिए भीगी बिल्ली बनकर सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, ठप्पा लग जाए, एक दफा हम भी दुनिया में बख्श जाए, अल्लाह हमें जन्नत का सर्टिफिकेट वो ग्रीन कार्ड की सूरत में दे दे, हरी हरी जन्नत नजर आती है। सारे एतराज हमें अल्लाह की बात पे क्यों उठते हैं, ये सवाल है। अपने ऊपर लेकर सोचिए, दीन के मामले में मैं इतने सवाल क्यों करती हूं? सवालों की बजाय अमल कीजिए। बात माननी है तो मानने की तौफीक मिल जाएगी, नहीं माननी तो नहीं मिलेगी। और देखिए पीछे फरिश्तों की बात है, अल्लाह कहते तुम थक गए इबादत से, जाओ मेरे फरिश्ते बहुत हैं। वो एक शेर भी है ना कि तस्बीह के लिए फरिश्ते बहुत है। असल बात यह है कि अल्लाह ने मुझे आपको इताअत के लिए पैदा किया, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब इसमें कुछ बातें कायनात के हकायक की भी आपको दिखेंगी। क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते? ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की, क्या वो इस खल्लाकी को नहीं मानते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढुलक ना जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी शायद के लोग अपना रास्ता मालूम कर ले। हमने आसमान का एक मजबूत छत बना दिया, मगर ये है कि कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। है ना हैरत की बात कि जो कायनात पे गौर कर रहे हैं वो रब्बे कायनात को नहीं मानते, और जो रब्बे कायनात को मानते हैं उनके पास कायनात पे गौर व फिक्र का टाइम ही नहीं है, मसरूफ बहुत है। और ऐ नबी हमेश की तो हमने आपसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी। अब जरा से इस आयत पे दर्द को महसूस कीजिए। अगर इस दुनिया में हमेशा रहने का हक अगर किसी को होता तो वो प्यारे नबी को होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो ना रहे तो फिर किसी और को रहने की क्या जरूरत है, और कोई कैसे रह सकता है? इसीलिए फरमाया, अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हकीकत यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। चलिए थोड़ा सा अपनी मौत को याद करते हैं, आनी है ना, हकीकत है, टलेगी तो नहीं किसी के टाले से। कहाँ मरेंगे हम? अपने ऊपर ले, मैं कहाँ मरूंगी? सफर में कि हजर में, घर में होंगी या बाहर होंगी, गर्मियों में मेरी मौत आएगी कि सर्दियों में, सुबह में जाऊंगी कि शाम में, रात में कि दिन में। अल्लाह ताला ईमान की मौत है, उसके लिए शर्त है कि जिंदगी इस्लाम वाली हो। ये मुनकरीने हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। अल्लाह अकबर। बात यह कि इंसान जल्दबाज मखलूक है। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी कब पूरी होगी। अगर तुम सच्चे हो, काश इन काफिरों को इस वक्त का कुछ इल्म होता, जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे ना अपनी पीठें, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो बला अचानक आएगी और उन्हें यकलख्त दबोच लेगी। ये ना इसको दूर कर सकेंगे और ना इनको लम्हा भर मोहलत मिल सकेगी। मजाक तो तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है। नोट करें, मक्का का वो दौर जब मजाक शुरू हो चुके थे, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले इसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जरा सा सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लम की जगह खुद को लीजिए। आप देखिए कि पीछे मौत की बात है, आगे फिर आ रही है, बीच में मजाक उड़ाने की बात है। जिसको इलाही ना तुरजेऊन का यकीन होगा ना, वो दीन के नाम पे हर मजाक बर्दाश्त कर लेगा, हर नागवारी बर्दाश्त कर लेगा। और जिसने जिंदगी में इस कुरान का जायका चख लिया, उसकी मौत की कड़वाहट कम होगी, और जितनी जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट होगी उतना मौत का जायका कड़वा होगा। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपनी इज्जतों का सदका करने वाला बना दे, और वो क्या है, दीन के लिए, हक के लिए, अल्लाह के नाम पर अपना मजाक उड़वाना। और हक की पहचान ही ये है, जितना बड़ा हक कोई पेश करेगा उतना बड़ा रिएक्शन। वो पीछे झाक की बात याद कर लें, उतनी बड़ी मुखालफतें होंगी। अल्लाह ताला आपको मुझे साबित कदमी अता फरमाए। दूसरी बात, इन आयतों में अगर आप देखें तो आपने बड़ी खुली कल इंसान में नजर जल्दबाजी, गो के हम इस पे पीछे टाइम वेस्टर में बात कर चुके हैं, लेकिन ये आयत भी थोड़ी सी तवज्जो चाहती है। और वो क्या कि इंसान अपने मिजाज के एतबार से जल्दबाज है। रिवायत से पता चलता है कि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आधे धड़ में रूह गई थी तो उठ के बैठने शुरू हो गए थे। शैतान ने भी देख लिया था कि इंसान जल्दबाज है। हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ने हमारे अंदर जल्दी क्यों रखी, ताकि हम नेकियों में जल्दी करें, हम अपने अधूरे कामों को पूरा करें। लेकिन जब ये जल्दबाजी तबीयत में आती है तो इंसान बेचैन होता है। कुछ लोगों को देखिए हर वक्त बेचैन, काम कर भी चुके हैं फिर बेचैन, बोलते हैं तर 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 तर। हम सब जरा इस आयत पे अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं, मैं बोलती कैसे हूं, जल्दी जल्दी बोलती हूं। आपको पता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक मौके पे अपने हुजरे में इबादत में मसरूफ थी, पता चला हजरत अबू हुरैरा आए हैं, वो पर्दे के दूसरी तरफ से बैठ के जल्दी में अपनी कोई बात कर कर आके चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब सलाम फेरा तो कहा अबू हुरैरा को बुलाओ, कोई उसको बताए कि अल्लाह के नबी सल्लम जब बोलते थे तो कितना ठहर ठहर कर बोलते थे। यानी वो हुरैरा जल्दी में आए, ये सोचा भी नहीं कि अंदर वो सुन रही है नहीं सुन रही, नमाज पढ़ी, जल्दी से मैसेज दिया। हम नहीं ऐसा करते, सर पे खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने वाले, चाबी किधर है, चाबी किधर है, इशारे करते। वो हमारी एक खानदान की एक बुजुर्ग थी, तो मशहूर है कि नमाज पढ़ रही थी, गली में से केले वाला आ गया, तो अब वो कह तो सक नहीं रही थी कि केले ले लो, तो ऐसा केले ले। ये भी जल्दबाजी है, और कहाँ जल्दबाजी हम करते हैं। आप देखिए ताल्लुकात क्यों बिगड़ते हैं, बिलीफ में जल्दबाजी की वजह से, दिल मैले की होते हैं जल्दबाजी की वजह से, जजमेंट क्यों पास करते हैं दूसरे पे जल्दबाजी की वजह से, वो है ही झूठी, वो है ही सुस्त, जल्दबाजी। बदगुमानियां क्यों पैदा होती हैं जल्दी, खाना खुलता है तो लोग कैसे भागते हैं जल्दी, खाना कैसे खाते हैं। और आप देखिए कुछ लोगों के तो नसीब में है ही हौलना, वो कहते हैं हम ना चैन लेंगे ना लेने देंगे, तो अपने अंदर सुकून लाइए। कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, जैसे आप में से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कब पारा पूरा होगा। पहले शुरू होने का शौक, फिर खत्म होने का शौक, फिर पूरा होने का शौक, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से, सुकून से। और आप कहते हैं कि अल्लाह को ये सिफत बड़ी पसंद है। अल्लाह के नबी के दौर में एक वफद आया, उसके लीडर थे अश्जो नाम था उनका। सारे काफले वाले पसीने से भरे हुए, थके मांदे दूर से आए थे। जू ही मदीना उनको नजर आया, मसनवी में घुसे, अपनी सवारियां उतारी, जाके नबी सल्लम को मिल रहे हैं, चूम रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। दीवाने हो गए भाई, मदीना पहुंच गए, और क्या चाहिए। लेकिन उनके जो लीडर थे ना, वो आराम से अपनी सवारी से उतरे, अपना बैग खोला, उसमें एक जोड़ा निकाला, साफ सुथरे होके कपड़े पहने, फिर आके अल्लाह के नबी को मिले। जब उनको बड़ी तहमुल वाली चाल चलते देखकर आता देखा, तो आपने फरमाया, इन नफी कला खसलतें, ऐ अशजो तेरे अंदर दो खूबियां बड़ी प्यारी हैं। कौन सी? जो अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं, और वो क्या है? अल खिल्म वल इना। तेरे अंदर हलीमी है, तू सॉफ्ट है, और इना मतानत है, तू जल्दबाज नहीं है। यानी आपने एडमायर किया, पसंद किया कि पसीने से भरे हुए तुम आके मुझे मिलने की बजाय साफ सुथरे होके मिले हो। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, ये मेरी सिफात अल्लाह को पसंद है। कहा हाँ। कहा ये बताएं कि ये अल्लाह ने मुझे दी है या मैंने खुद पैदा की है। अब देखिए ना, तजस्सुस कितना होता है जब पता चले कि मेरी तारीफ हो रही है। आपने फरमाया कि तुझे ये अल्लाह ने दी है, वाह भी है, एक होती कस्बी एक होती वाह भी। तो ये बात सुनकर वो खुश हुए, कहने लगे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वो सिफात दी जो अल्लाह और उसके रसूल को अच्छी लगती हैं। और याद रखिए, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को प्यारे हो गए ना, तो हम लोगों को भी प्यारे होंगे। तो अपने अंदर ठहराव लाएं, चुलबुलापन खत्म करें, पांव जमीन पे लगाएं, आप देखेंगे आपके बच्चे आपसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करेंगे और आपकी बात भी ज्यादा मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसा ठहराव ले आए कि जो हमारी बात सुने उसका मानने को दिल करे। बहुत तेज बोलेंगे ना तो बात ऊपर से गुजर जाएगी, बहुत ऊंची बोलेंगे तो कानों से भी ऊपर गुजर जाएगी। आगे वापस बात पे चलते हैं। ऐ नबी इनसे कहो, कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता है, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये सब कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें? वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही ताई इनको हासिल है। असल बात यह कि इन लोगों को और इनके आबा उजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले गए, यहाँ तक कि इनको दिन लग गए, मगर कहने नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं। फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे? इनसे कह दो, मैं तो वही की बिना पर तुम्हें मुतनबिह कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते जबकि इनको खबरदार किया जाए। यहां आप देखिए दो बातें हैं। पहली बात है कि जब कुछ खानदानों में नस्ल दर नस्ल दौलत आम हो जाए ना, तो वहां अल्लाह से दूरी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेहनत नहीं की होती ना, तो बाप दादा की कमाई तो वैसे ही बंदे को माले मुफ्त दिले बेरहम लगती है। दूसरी बात, जहां जमीन के किनारों से घटाने की बात है, तो याद रखिए कि जिंदगी में देखा जाए तो हो हम सबके साथ यही रहा, वक्त के साथ साथ हुसन घटने लगता है। फिर आप देखिए, वजन तो बढ़ता है, हुसन घटता है, खाना खाने की स्पीड कैसी हो जाती है। वो लोग जो एक या दो रोटी खा लेते थे दो चार लोग में, और बाद में सिर्फ दलिया और सिर्फ सूप। हमारे हमारी अपनी सास है, वो कहा करती हैं, हमारी खाने की नहीं खिलाने की उम्र है, तो वो फिर खूब खिलाती हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी जिंदगी में हर चीज घट रही, आंखें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हैं, समात घट रही है, और देखा जाए तो इस बड़े से घर और एक एक बड़े से कमरे में से निकालकर हमको एक दिन एक छोटी सी कब्र में लोग डाल आएंगे। ये है दुनिया के घटने का वक्त, अल्लाह अकबर। लेकिन बात है कि बहरे बात को सुनते नहीं, अल्लाह इस बात से ही हमें फायदा दे दे। और अगर तेरे रब का साहब जरा से इनको छू जाए तो भी चीख उठे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खताबार थे। क्यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, यानी उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, फौरन पूरी चल पड़ेगी एकदम। फिर किसी शख्स पर जर्रा बराबर जुल्म न होगा, जिसका राई के दाने बराबर भी कुछ किया धरा होगा, वो हम सब सामने ले आएंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। वापस आ जाइए, एक तरह वाले नास ही हिसाब हम पे, हिसाब किताब। याद रखिए, बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह कहते हैं हम खुद तराजू रखेंगे, क्यों? जब बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है ना, आप कहते हैं मैं खुद डील करूंगी, अल्लाह कहते हैं मैं खुद तराजू रखूंगा। इनको किसी के ऊपर शक ना आ जाए, किसने क्या किया, उसने ये किया वो ना किया, तो जरूरत है कि आज ही अपने आप को ठीक किया जाए, अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान ले। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं इन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बिन देखे अपने रब से डरे हैं और जिनको हिसाब की इस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो। कितना खूबसूरत अंदाज है शऊर को बेदार करने वाला। अब यहां से इब्राहिम और उनकी कौम का झगड़ा क्यों? मक्का में नबी सल्लम के साथ झगड़े शुरू थे, आपके बाप की मिसाल दी जा रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके पे क्या रिएक्ट किया। वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन कब्ल, इससे भी पहले हमने इब्राहिम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था, ये मूर्तें कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो। इसको नोट करें, सबसे पहले लोगों के जहन में ये सवाल डालें, ये क्या बेकार काम करते हो, ये क्या बेकार जिंदगी, ये क्या बेकार मशगलें हैं, ये क्या चीज है वो है। आप देखेंगे कि जिन चीजों के सहर में लोग मुब्तला होते हैं ना, जब थोड़ी सी कोई इस एंगल से बात कर देना तो जरूर सोच में तो पड़ ही जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते पाया। ये भी नोट कर लें, अक्सर लोगों का रस्म और रिवाज और अपने तौर तरीकों पे तनकीद सुनकर यही जवाब होता है, पता नहीं क्यों करते हैं। जब मैं आई तो मेरी सास करती थी तो मुझे भी करना पड़ा, मेरी तो दादी अम्मा ये काम करती थी तो मैं बच्ची थी तो उनको देखती थी तो अब मैं भी करती हूँ। बहुत कम लोग सोच के कोई काम करते हैं। तो याद रखिए, अंधी तकलीद अच्छी नहीं होती। बुजुर्गों की इज्जत करें, खिदमत करें, प्यार करें, लेकिन बिन सोचे समझे उनके नाम से गलत काम नहीं करने। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक कर रहा है? इसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिल वाके तुम्हारा रब वही है जो जमीन व आसमान का रब और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और खुदा की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। जरा देखिए इब्राहिम का जुमला, अगर उस दौर में सोशल मीडिया होता तो इब्राहिम का ये जुमला कैसे कैसे तबसरों के साथ पेश किया जाता। देखो जजमेंटल हैं, ऐसे हैं, वो हैं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। और याद रखिए, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। चुनाचे उसने इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ इनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वो इसी की तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया। नोट करें, खुदाई क्या है कि जिनका को हाल से बेहाल कर गया। बड़ा ही कोई जालिम था। बास लोग बोले, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ लो इसे सबके सामने ताकि लोग देख लें इसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहिम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? इसने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ इनके सरदार ने किया है, यानी मेरे नहीं है, इनके बड़े ने किया है। इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हो। ये सुनकर वो लोग अपने जमीर की तरफ पलटे। इसको कहते हैं तबलीग, और लोगों का जमीर जाग जाए और अपने दिलों में कहने लगे, वाकई तुम खुद ही जालिम हो। मगर फिर इनकी मत पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं है, यानी जवाब ही नहीं दे सके, लाजवाब थे। कहने लगे, हम कैसे इनसे पूछे, मूर्तियों से, ये तो बोलती नहीं है। इब्राहिम ने कहा, अच्छा फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीजों को पूछ रहे हो जो ना तुम्हें नफा पहुंचाने पर कादिर है ना नुकसान। तुफ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो, क्या तुम कुछ भी अकल नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हिमायत करो अपने खुदाओं की। हाईलाइट करें इसको, हिमायत करो अपने खुदाओं की। हमने तो ये सुना हुआ है कि खुदा आपकी हिमायत करता है, ये है शिर्क की बुराई, अकल ही मारी जाती है। बजाय इसके कि खुदा उनकी मदद करे, ये अपने खुदा की मदद करने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है, हमने कहा, कुल नया ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। आग हुई ठंडी, क्या पता चला आग अल्लाह की मखलूक है। समय न वादा न सुना तो बात मान ली। आप जरा सा यहां से गौर कीजिए इब्राहिम के इस एक्शन पे, आग में कूद पड़े, अकल ने कितनी तावीलें सिखाई होंगी। हाय तुम मर गए तो क्या होगा, फिर तुम वाहिद ही तो तौहीद वाले हो, फिर तुम तबलीग कैसे करोगे, ये है वो है। नहीं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है लबे जुए बाम अभी। जो अकल से पूछते हैं वो अक्सर बैठ ही जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं सोची प्याते बंदा गया। याद रखिए, जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए बगैर सोचे समझे, अल के हा और खुश हा। मूसा के लिए हुक्म था, इब्राहिम के लिए आग में कूदना। जरा नोट करें, मूसा को सांप पकड़वाया हाथ में, इब्राहिम को आग में कूदवाया। मुझे आपको जो दीन के छोटे बड़े हुक्म दिए वो मुश्किल है या ये मुश्किल है? एक गज टुकड़ा मुश्किल है, चार बाल मुश्किल है, इस जिस्म को दिन में चंद बार अल्लाह के आगे झुकाना मुश्किल है, या ये बड़े बड़े हुक्म मुश्किल है? बस ये सीख रहे हम सूरत अंबिया से। हम कहाँ ये बड़ी बातें सीखते, हम कहाँ समझते। और इस पे कॉल आता है कि अगर अल्लाह ताला बर्दन के आगे सलामन ना कहते तो वो आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठंडक की वजह से वहां तकलीफ में होते हैं। आपको पता है कि ठंडक की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है गर्मी से भी। बर्फ की टुकड़ी को कभी हाथ लगाएं या सांचे को हाथ लगाएं, ऐसा लगता है कि उंगली छिन गई, साथ चिपक जाती है। अल्लाह ने इतनी बड़ी आग को झुका लिया अपने आगे, तो मुझे आपको भी झुकना है। अल्लाह ताला हमें वो जज्बे दे जो अल्लाह के आगे कुर्बानियां देने वाले हों। याद रखिए, ठंडा ठंडा ताल्लुक अल्लाह से, ये कोई मजे का ताल्लुक नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आपको अपने बहन भाइयों से प्यार है, पर इस ओके हेलो क्या हाल है ठीक है चलो खुश रहो। और एक वो ताल्लुक होता है जिसमें आप हकीकत में इंजॉय करते हैं रिश्तों को। अल्लाह के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बड़ा गर्म लगा, इसीलिए देखिए फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद कैसे की। वारादू भी कईदा, वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करे, मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया, और हम उसे और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं, और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब इस पर मजीद, और हर एक को सालेह बनाया, और हमने इनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, और हमने इन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने और जकात देने की हिदायत की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। यहाँ फिर नोट करिए, ये इसहाक और याकूब जैसे प्यारे बेटे और पोते कब मिल रहे हैं? जब आग में कूदे। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। आपको पीछे भी लिखाया था, इब्राहिम ने एक कुर्बानी की, अल्लाह ने एक इनाम दे दिया। एक जगह आजमाइश में पूरे उतरे, अल्लाह ने दूसरी नेकी का मौका दे दिया। यही आज मेरे आपके साथ भी अल्लाह का मामला है, लेकिन हम उससे पहले ही थक जाते हैं। हम कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, नहीं मेरे लिए ये नहीं हो सकता, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इब्राहिम भी ऐसे जुमले खूबसूरत बोल रहे होते हैं ना, तो आग ने ठंडे को ही नहीं था होना। और रिवायात जाके पढ़ लीजिए, इब्राहिम कहते हैं वो दिन जो मेरे आग में गुजरे वो कितने भी थे आपको मुझे क्या लगे, कहते हैं मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे, सुबह शाम आसमान से सलाम आता था। क्योंकि वो आग जो अल्लाह के रास्तों में जगाई जाती है ना, वो दुनिया की ठंडक के मुकाबले में बहुत मजे की होती है। बिल्कुल ये चीज वो एंजॉय करेगा जो दीन में आए और आजमाया जाए। लोग कहते हैं हाय बेचारी, वो कहते हैं तुम्हें क्या पता मेरे पास कितना चारा है। लोग कहते हैं हाय बेचारी मजलूम, तुम्हें क्या पता मेरी क्या जिंदगी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। आप देखिए, धूप है, कोई जा रहा है, उसने सर पे एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ है, और दूर से कोई देख रहा है कहता है हाय इतनी गर्मी, और ऊपर से इतना बोझ उठा के ये बंदी जा रही है उसके पास जाए, भाई लाओ जरा ये गट्ठल मैं उठा लूं तुम्हारी कुछ मदद करूं। वो हंसे हो के नहीं ये गट्ठल नहीं है, जरा हाथ तो लगा। वो हाँ, अरे ये तो फोम का टुकड़ा है, ये तो मुझे इस धूप से बचा रहा है। समझ आ रही है, वो गट्ठर उसको गर्मी सर्दी से बचा रहा है, यही दीन का गट्ठर है। दूर बैठे वालों को ये बोझ लगता है, हाय 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 मौलवी बेचारे, हाय मुल्लानिया, हाय दर्स वालियां, हाय फलाने फलाने फलाने, हाय बेचारे बेचारे। उनको क्या पता कि ये दीन कितनी बड़ी ढारस है। तो जो दीन की छांव के नीचे आ जाता है उसके लिए आग भी ठंडी हो जाती है। अल्लाह हमें इस दर्जे का ईमान तो दे।